रात का वक्त था। सुबह के बाद सुमन को माधव कहीं नजर नहीं आया था। उसे तो किसी ने एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। नई बहू थी तो लोगों का आना जाना लगा ही हुआ था। सारा दिन वो गुड़िया जैसी सजी आने जाने वाले मेहमानों से मिलती रही और मन ही मन खींचती रही। शाम का वक्त था। कुछ देर आराम करने के बाद सुमन अपना बैग खोलकर बैठ गई। उसने अलमारी खोली तो उसमें माधव के 3-4 जोड़ी घर और बाहर जाने के कपड़े रखे थे। बाकी पूरी अलमारी खाली पड़ी थी। सुमन अपने कपड़े निकालकर जमाने लगी। भाभी, आप अपना सामान सेट कर रही हैं, मैं मदद कर दूं आपकी? कविता ने कमरे में आते हुए कहा। बिना नॉक किए वो सीधे ही रूम में चली आई थी, जो सुमन को पसंद नहीं आया। मुझे पसंद नहीं कोई बिना नॉक किए ऐसे ही मेरे रूम में आ जाए, आगे से ध्यान रखना। लो भाई, नई भाभी ने आते ही फरमान सुना दिया, जिससे कविता खींच उठी। वो तो शायद उससे लड़ ही बैठती, पर उसकी नज़र सुमन के हाथ में मौजूद साही पर चली गई और उसकी आंखें चमक उठी। अच्छा भाभी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि बिना गेट खटखटाए अंदर ना आओ। आप कहें तो मैं वापस जाकर और फिर पूछ कर अंदर आती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आगे से ध्यान रखना, सुमन ने उखड़े स्वर में जवाब दिया और साड़ी को हैंगर में टांगने लगी। भाभी, मैं मदद करवा दूँ आपकी? कविता ने फिर कहा। सुमन उसे इनकार करने वाली थी, फिर कुछ सोचते हुए उसने हामी भर दी। चलो तो मुझे कपड़े उठा उठा कर दे दो, मैं उसे ठीक से लगा लेती हूँ। सुमन का जवाब सुनकर कविता मुस्कुराई और झट से सर हिलाते हुए उसके पास पहुँच गई। उसको कपड़े देते हुए वो बड़े ही ध्यान से सब देख रही थी। सुमन के सभी कपड़े बढ़िया, सुंदर और महंगे लग रहे थे, और बस यही कविता के मन में लालच आ गया था। भाभी, आपकी ये साड़ी कितनी खूबसूरत है, मैं ले लूँ क्या? कविता ने लालची निगाहों से उस गुलाबी रंग की साड़ी को देखा और उस पर हाथ फेराने लगी। सुमन जो दूसरा बैग खोलने लगी थी, कविता की बात सुनकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। वो तेज कदमों से चलते हुए उसके पास आई और एकाएक उसके हाथ को झटकते हुए नाराजगी से बोली, मुझे पसंद नहीं मेरी चीज पर कोई नजर रखे या मेरी इजाजत के बिना उसे हाथ लगाए। अपनी चीजें बांटकर समाज सेवा करने का कोई शौक नहीं है मुझे। आओ अब यहां से, और आइंदा ऐसे मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। सुमन ने उसे अच्छे से छिड़क दिया था, और नई भाभी का ऐसा व्यवहार कविता के अहम पर चोट कर गया, जिससे वो गुस्से से बिदक उठी। भाभी, ये कैसे बात कर रही हैं आप मुझसे? एक साड़ी ही तो मांगी थी ना मैंने आपसे, ननद हूं आपकी, वो भी सबसे बड़ी, इतना हक तो है मेरा, फिर आप मुझसे चिल्ला क्यों रही हैं? इन दोनों के बीच बात और बिगड़ती उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला और माधव ने अंदर प्रवेश किया। क्या हो रहा है यहाँ, आवाज बाहर तक आ रही है? माधव ने बारी बारी दोनों को देखते हुए जरा नाराजगी से सवाल किया। कविता ने तुरंत ही अपनी आंखों में आंसू भर लिए और अपने भाई के पास पहुंच गई। भैया, देखिए ना, मैं भाभी के साथ सामान सेट करवा रही थी। मुझे उनकी एक साड़ी पसंद आई तो मैंने बहुत प्यार से उनसे पूछा कि मुझे वो साड़ी दे देंगी, पर भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर झटक दिया और मुझ पर चिल्लाने लगी कि दोबारा उनसे बिना पूछे कमरे में ना आऊं, उनकी किसी चीज को हाथ ना लगाऊं। अगर उन्हें साड़ी नहीं ही देनी थी तो प्यार से भी तो मना कर सकती थी ना, मैं कौन सा जबरदस्ती उनकी साड़ी उनसे छीन कर ले जाती जो वो मुझ पर ऐसे चिल्लाने लगी। कविता के तो सुरताल ही बदल गए थे। उसने खुद को बेचारी ननद और सुमन को एक क्रूर और अत्याचारी भाभी बना दिया था। कमर पर हाथ धरे सुमन कुछ पल उसे गुस्से से घूरती रही, फिर उसने अपनी नाराजगी भरी निगाहें माधव की ओर घुमा ली। मुझे पसंद नहीं कि मेरी इजाजत के बिना कोई मेरे कमरे में आए या मेरी चीज को हाथ लगाए। अपनी बहन को प्यार से ये बात समझा देना, क्योंकि मुझे बार बार अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं और ना ही ऐसा ड्रामा देखने में कोई दिलचस्पी है। सुमन शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जो मन में था वही जुबान पर था, शब्द तीखे थे। तभी कविता अपने इस अपमान पर गुस्से से तिलमिला उठी थी। देखा भैया, कैसे बात कर रही है भाभी मुझसे? कविता के फिर माधव से शिकायत लगाई। माधव, जिसकी निगाहें सुमन पर ठहरी थी, अब उसने निगाहें कविता की ओर घुमाई और प्यार से उसे समझाने लगा। कविता, अपनी भाभी की बात का बुरा मत मानना, मैं तुझे साड़ी दिला दूंगा। आप बड़े आए मुझे साड़ी दिलाने वाले, मालूम भी है कितनी महंगी साड़ी है? साल भर भी पैसे बचाएंगे ना तब भी वो साड़ी नहीं दिला पाएंगे आप, और बात करते हैं। कविता ने मुंह बनाते हुए उसका मजाक उड़ाया और वहां से चली गई। उसने इतने गंदे तरीके से ये बात कही थी कि माधव की आंखों में पानी आ गया था। अब तक की अपनी सारी जिंदगी उसने जिस पर कुर्बान कर दी, वही आज उसका अपमान कर गई थी। अपना दर्द छुपाते हुए वो फीका सा मुस्कुरा दिया। सुमन, कविता की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसे महंगी चीजों का बड़ा शौक है इसलिए बोल गई होगी, पर आगे से वो आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। सुमन, जो अब तक जाती हुई कविता को गुस्से से घूर रही थी, उसने अब नजरें माधव की ओर घुमाई और उसकी बात को लगभग नजरअंदाज करते हुए नाराजगी से भौं उचकाते हुए सवाल किया, कहाँ थे सुबह से? मैंने कितना ढूंढा तुम्हें, पर सुबह से गायब, अब नजर आ रहे हो मुझे। काम पर गया था, बीते दिनों शादी की तैयारियों और रस्मों में बहुत छुट्टियां हो गई थी, कुछ हिसाब किताब करने थे जिसके लिए पैसे भी लेने थे। आज ही जाना जरूरी था क्या? अभी हमारी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम अपने काम में लग गए। मैं यहाँ सारा दिन औरतों के बीच बैठकर बोर होती रही। सुबह के बाद अब मिल रहे हैं हम, ऐसे जानेंगे हम एक दूसरे को और ऐसे बढ़ेगा हमारा रिश्ता आगे। सुबह से वो परेशान थी और अब सारी भड़ास माधव पर निकाल रही थी, पर माधव अब भी शांत बना रहा। अभी घर में बहुत मेहमान है और लोगों का आना जाना भी लगा ही रहता है। घर में रुकता तब भी कोई फायदा नहीं था, इसलिए सोचा कुछ काम ही कर लूं। तो मतलब अभी तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, मुझे कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जा सकते? सुमन ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। माधव ने सहजता से इनकार कर दिया। नहीं, अभी कुछ दिन तो ये मुमकिन नहीं। मेहमान चले जाएं फिर ले चलूंगा आपको बाहर घुमाने, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के नाम पर ही सुमन का मुंह बन गया। बड़े बैकवर्ड लोग हो, मतलब अपनी ही वाइफ के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, उसे कहीं बाहर नहीं लेकर जा सकते। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। मेरे भाई की शादी हुई थी तो वो तो अगले दिन ही भाभी को लेकर घूमने चला गया था। सारी रात बाहर बिताई पर किसी ने एतराज नहीं जताया। आपके और हमारे रहन सहन में बहुत अंतर है, बस इतना ही कहा था उसने और सुमन सोच में पड़ गई। कुछ पल बाद उसने गालों को फुलाते हुए खफा खफा अंदाज में कहा, मुझे इन सब की आदत नहीं है। आज सारा दिन मुझे शोपीस जैसे बाहर बिठा कर रखा था और पता नहीं कैसी कैसी औरतें आकर मुझे देख रही थी, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मम्मी जी को कहना कि मुझसे ये सब नाटक नहीं होगा, इंसान हूँ है, कोई पेंटिंग या शोपीस नहीं जिसकी एग्जीबिशन लगाई जाए और सब आकर मुझ पर कमेंट्स करें। आप बहू हैं इस घर की, नई नई शादी हुई है हमारी, अभी लोग आएंगे ही आपको देखने, और ये हर जगह होता है, बस कुछ दिन की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसके बाद कोई आकर ऐसे आपको परेशान नहीं करेगा, फिर जैसे आपका मन हो वैसे रहिएगा, आप पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। अच्छा चलो, ये टॉर्चर तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर कुछ खाने के लिए तो मंगवा दो, सुबह से मैं ढंग का खाना खाने के लिए तरस गई हूँ। क्यों, आपको खाना पसंद नहीं आया? माधव ने जरा चौंकते हुए सवाल किया और जवाब में सुमन ने अपनी नाक से कोड़ ली। ऐसा सादा खाना तो मैं बीमारी में भी नहीं खाती।
आप बता दीजिए आप क्या खाएंगी, मैं जाकर ले आता हूँ। वैसे तो मैं बना ही देता पर अभी घर में बहुत लोग हैं, अगर मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा तो उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाएगा।
एक लार्ज साइज डबल चीज पिज्जा और पनीर रोल, इतने में काम चल जाएगा मेरा। सुमन की फरमाइश सुनकर माधव के माथे पर सिलवटे पड़ गईं और वो मन ही मन अपनी जेब टटोलने लगा। शादी में पैसे पानी जैसे बहा था और अभी अभी पेमेंट भी करके आया था तो जेब बिल्कुल ही खाली थी। क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या? मैं दूं? सुमन के शब्द माधव के कानों में पड़े और उसने हड़बड़ाते हुए इनकार में सर हिला दिया। जैसे घर में आया था वैसे ही उल्टे पैर वापस बाहर निकल गया था, बाइक स्टार्ट की और अपनी नई नवेली बीवी की फरमाइश पूरी करने निकल गया। करीब आधे घंटे बाद वो घर लौटा, पर अब अंदर कैसे जाए ये समस्या मुंह बाए उसके सामने आ खड़ी हुई थी। बाहर से अभी कुछ घर में लाना, वो भी सब लोगों की नज़रों से बचते हुए, ये भी कोई आसान काम नहीं था, और उसे बिना किसी की नज़र में लाए सुमन तक पहुंचाना तो और भी मुश्किल काम था। वो सामान लेकर बाहर बनी सीढ़ियों के जरिए छत पर चला गया। सर्दी का वक्त था तो वहां कोई भी नहीं था। वहां से वो आराम से नीचे अपने कमरे में चला आया और सुमन की अमानत उसके हवाले करने के बाद चैन की सांस ली। खाकर रैपर और डब्बा पन्नी में डालकर रख दीजिएगा, मैं बाद में ले जाऊंगा, अभी बाहर जा रहा हूँ। सुमन ने झट से हामी भरी और पिज्जा का डब्बा खोलकर बैठ गई। माधव जैसे आया था वैसे ही घर से बाहर निकल गया और फिर दरवाजे के रास्ते अंदर आया तो जैसा कि अंदाजा था नीचे ही उसे रोक लिया गया। टू बी कंटिन्यूड।